दिल्ली में रामलीला मैदान पर सबसे पहली बार हमारा स्पिरिचुअल फेयर होने जा रहा था। आधा मेला बन चुका था, तैयार हो चुका था। अचानक जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भारत की थी, उन्होंने हमें लेटर आ गया कि इस मेले को यहां से हटा दो। क्यों? क्योंकि उस समय रशिया का प्रेसिडेंट जो है भारत को गेहूं देता था, तो उन्होंने कहा भारत रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी हमें यहां करना है। ठीक है, लेटर आ गया। जैसे ही लेटर आ गया, प्रकाशमणि दादी जी ने कहा सारा काम स्टॉप करो, और उसके बाद सभी सेंटरों पर दिल्ली के मैसेज भेज दिया, सभी रात भर तपस्या करो और गवर्नमेंट को सकास दो। और मेले में जो भी 500-700 भाई बहने थे, उन्होंने भी सारी रात जाकर बाबा से सकास लेकर सरकार को जो है सकास देते रहे। उस समय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, कुछ गुप्तचर वहां भेजे कि देखो तो सही वहां क्या मेले ग्राउंड पर क्या हो चुका है, क्या तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले दुर्गा देवी का मॉडल, ओपनिंग मॉडल तैयार था। अब इस मॉडल को तो हटा नहीं सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे देखा आधा तो मेला बन चुका है इनका। जैसे गुप्तचर ने मैसेज पहुंचा है इंदिरा गांधी के पास, तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा। दूसरे दिन 11 बजे हमारे पास लेटर आता है, ठीक है ठीक है, अपना मेला आप चालू रखो, आगे बढ़ाओ, हम रशिया के प्रेसिडेंट का वेलकम सेरेमनी दूसरे ग्राउंड पर कर रहे हैं। देखो, सरकार की मंशा को चेंज करना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे विघ्न को भी सेवा से हटाने के लिए मनसा सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बात है। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अगर हिम्मत और साहस का दान हमें देना है, कोई व्यक्ति अगर कुछ काम करने के लिए क्षमता नहीं रखता है, उसको हमें सहयोग देना चाहते हैं, तो मनसा सेवा के द्वारा आप दे सकते हैं। कोई गरीब होता है तो उसको दो धन पैसा देते हैं, सहयोग देते हैं। तो ऐसे जो कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति होता है, उसको अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, तो सूक्ष्म वतन में उसको इमर्ज करके बाबा से सकास लेकर उसको दे सकता है। लेकिन न्यारा प्यारा होकर उस व्यक्ति को या उस ग्रुप को हमें सकास देना है और उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जितनों को हम आगे बढ़ाते हैं उतनों की दुआएं हमें मिलती हैं। सहयोग करने से ऑटोमेटिक वो पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाता है। दूसरी बात, मनसा सेवा का प्रयोग अपने सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। बात 1993 की है। मैं 11 देशों की सेवा में 2.5 मास विदेश में गया था। यूरोप के बाद में मैं अफ्रीका में सेवा पर था, तो एक दिन हम केनिया से बायकार टांजानिया जा रहे थे। सवेरे 5 बजे ट्रैवलिंग शुरू किया, रात बजे हम पहुंच गए दार ए सलाम, टांजानिया की कैपिटल जो है वहां पहुंच गए। लेकिन जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे थे, दिन में 2 बजे जंगल से पार कर रहे थे, चिड़िया की आवाज नहीं थी, अचानक 2 अफ्रीकन पुलिस आ गए रास्ते में और उन्होंने हमारी कार रोक दी। एक साल पहले वहीं कुछ अफ्रीकन ने अपने भाइयों की कार को रोका था, ऐसे खिले वहां सड़क पर ठोके थे, और जैसे ही उस पर से गाड़ी गई पंचर होकर, जैसे ही रुक गई वो आके उन्होंने भाइयों को मारा, खून खून निकला, बहनों को कुछ नहीं किया लेकिन लूट लिया। तो हमने कहा अभी इन्होंने रोक लिया तो अभी ये जरूर कुछ नुकसान पहुंचाएंगे या कुछ हमारे पास है वो लूटेंगे लेंगे। तो वो आनंद भाई जो मधुबन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अभी समर्पित है वो हमारी कार चला रहा था, हम दोनों ही थे, मैं लेफ्ट बाजू में बैठा था, ड्रेस मेरी यही थी, और वो पुलिस अपनी भाषा में वो बात कर रहे थे आनंद भाई से। और फिर उन्होंने कहा ओवर स्पीड कार है आपकी, रोको, हमने रोक दिया। फिर जैसे वो आनंद भाई से बात कर रहे थे उस समय मैं बाबा से सकास लाइट माइट ले रहा था और उन पर डाल रहा था कि बाबा इनकी मनसा को चेंज करो ना, हमें कुछ तकलीफ ना दे वो। फिर जैसे वो कार के सामने से मेरे तरफ आए तो कहा ये कौन है, ये स्पिरिचुअल लीडर है, ये कहां जा रहा है, ये दार ए सलाम में जा रहा है, वहां कुछ कॉन्फ्रेंस रखी है, वहां स्पीच देने के लिए जा रहा है। जैसे ही मुझे देखा उसने फिर कहा जाओ जाओ चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, छोड़ दिया। कहने का मतलब है आगे चलकर ऐसी बातें हमारे सामने आएगी, कोई हमें दुख पहुंचाने के लिए अगर समझो आता भी है तो बाबा से सकास लेकर उसको देते हैं तो उसकी मनसा ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। आगे चलकर ऐसा माहौल आएगा कि कोई समझो अगर हमें मारने के लिए भी आता है तो भी मार नहीं सकता है। उदाहरण देता हूं, मैं कार चला रहा हूं रात को, कोई रस्ते में आ रहा है तो उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है तो उसको व्हीकल नजर नहीं आता है, ये कार है जीप है क्या है, जीप नहीं व्हीकल नजर नहीं आता है क्योंकि वो लाइट उसकी आंखों पर पड़ रही है। तो ऐसी आगे चलकर हमारी स्थिति पावरफुल होती है और हमारी आत्मा की लाइट प्रखर होती है तो उसकी आंखों पर वो लाइट पड़ेगी तो उसको ये व्हीकल नजर नहीं आएगा, ये शरीर उनको नजर नहीं आएगा। अरे अभी अभी तो मैंने देखा यहां एक व्यक्ति बैठा था, जब वो जाता है उसको मारने के लिए, ये तो लाइट ही है तो लाइट को थोड़ी मारते हैं, चलो वापस। तो स्वयं की सेफ्टी के लिए ऐसी मनसा सेवा बहुत काम आएगी, समझा। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ी सेवा बाकी है, तत्वों को पावन बनाने की बेहद की सेवा बाकी है। उस सेवा के लिए बाबा योगी बच्चों की तलाश कर रहे हैं क्योंकि योगी बच्चे ही ऐसे बेहद सेवा में हाथ बटा सकते हैं और इस बेहद सेवा में जितना हम सहयोग देंगे डायरेक्ट बाबा के दिल की दुआएं हम जितनी चाहें अपने पास जमा कर सकते हैं। बस बाबा से पवित्रता की किरणें लेते रहें और सारे विश्व के ग्लोब पर सारे तत्वों पर पांचों तत्वों पर वो पवित्रता की किरणें डालते हैं तो ऑटोमेटिक जो तत्वों में इंप्यूरिटी है वो इंप्यूरिटी बाहर आ जाती है। अभी ये तत्व इंप्योर कैसे होते हैं, जब देवताएं वांग मार्ग में प्रवेश होते हैं उन्होंने विकार जागृत होते हैं तो उनके विकारी संकल्प जो उत्पन्न होते हैं जो तत्व बने हुए हैं वो एटम से बने हैं, अणु और परमाणु से बने हैं। तो एटम किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीन चीजें होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मूवमेंट हमेशा चलती रहती है और वो जो एटम के जो गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स के आधार पर निर्भर होती हैं। जब हमारे मन में पवित्र संकल्प चलते हैं सतयुग त्रेतायुग में तो पवित्र संकल्पों का सीधा प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर होता है तो सारे तत्व तमो पावन होते हैं, लेकिन अशुद्ध संकल्प क्रिएट होते ही अशुद्ध संकल्प का सीधा प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर होता है, उसके कारण जो है एटम्स जो है धीरे धीरे इंप्योर बनते हैं, तत्व धीरे धीरे इंप्योर होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय मनसा सेवा करते हैं तो बाबा से पवित्र संकल्प लेते हैं, शक्ति लेते हैं और प्रकृति पर डालते हैं तो ऑटोमेटिक उस एटम पर पॉजिटिव रिएक्शन होती है और इसकी इंप्यूरिटी ऑटोमेटिक बाहर आती है और विनाश की प्रक्रिया में हमारा हाथ बढ़ जाता है। तो जितना इस तत्वों को पावन बनाने की सेवा में हम सहयोगी बनते हैं उतना बाबा की दिल की दुआएं उतनी हमारी कमाई जो है बढ़ती ही जाती है। इस सेवा में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, भाई मेरे एरिया में नहीं आना, कोई नहीं है, विश बाउंड्री कोई नहीं है। बेहद की सेवा इसमें कर सकते हैं, जितनी चाहे कमाई आप कर सकते हैं। तो मनसा सेवा करने वालों को सारे कल्प में मानसिक बीमारी कभी हो नहीं सकती है, ये गारंटी है। जिसने अपने शक्तिशाली मनसा के द्वारा अनेक आत्माओं को सकाश दिया, अनेकों का भला किया, वो कभी भी मानसिक रीति से बीमार नहीं पड़ सकते हैं, मेंटल पेशेंट नहीं बन सकते, ये उनको रिकॉर्ड मिलता है, अवार्ड मिलता है। इसलिए इस मनसा सेवा में जितना हो सके हम बहुत अच्छी तरह से हाथ बटा सकते हैं और अपने दुआओं के खजाने को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता है, उतने हल्के फुल्के हम अनुभव करते हैं, उतना योगाभ्यास हमें सरल होता है। अभी मैं यहां बैठा हूं, मैं उठना चाहता हूं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 10 लोग आकर मुझे उठाते हैं, फूल की तरह उठाते हैं, मुझे मेहनत होगी नहीं होगी? तो दुआओं के हाथ हमें उठाते हैं, हल्का फुल्का अनुभव कराते हैं, जिसके कारण योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर गहन अनुभव होते हैं। ये है दुआओं का चमत्कार। पुरुषार्थ अपनी जगह है और दुआओं का जो खजाना है वो स्वतः ही मदद हमें करने लगता है और पुरुषार्थ में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, समझा? इसलिए मनसा सेवा से बहुत अच्छी तरह से कमाई हम कर सकते हैं। 2-3 साल के बाद आप देखना मनसा सेवा का ही बोलबाला चलेगा। पिछले सीजन में बाबा ने कह दिया, मनस वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, ये बाबा के बोल है। क्योंकि माहौल ऐसा आएगा जो हम करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, उस समय मनसा सेवा का ही बोलबाला होगा। तो अभी वाचा और कर्मणा सेवा का चांस है, खूब चांस लो उसका। आराम हराम है, संगम युग में आराम हराम है। सच्चा आराम किस में है? आ राम। जब बाबा बुद्धि में बैठ जाता है तो सच्चा आराम हमें मिल जाता है ना? एक स्लोगन रखो, संगम युग है अल्लाह की वेला, इस अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये अल्लाह की वेला है, भाग्य बनाने की वेला है। अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। पिछले वर्ष बाबा ने कहा, अलबेलेपन को अभी विदाई दो, गुड बाय करो, क्योंकि ये अलबेलापन जो है पुरुषार्थ में बाधा डालता है। इसको अर्ध निंद्रा कहते हैं, कहते हैं सोना माना खोना। तो अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है, इसलिए अलबेलेपन को हमें समाप्त करना है और कमाई करते रहना है, समझा? तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, संबंध से सेवा करो, संपर्क से सेवा करो, जो बाबा ने हमें ऑप्शन दिए हैं, चांसेस दिए हैं, किसको भी मिस नहीं करना है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते हैं तो बाद में हमें पश्चाताप ही करना पड़ता है। कहते मिले मौका तो मारो चौका, हाँ भाई, मौका छोड़ने का नहीं, मिले मौका तो मारो चौका या छक्का सीधा। सबसे मैक्सिमम कमाई उसमें है। माया के साथ क्रिकेट खेलते हैं, वो संकल्प छोड़ती है, वो सीधा चौका मारना माना, ये साकारी दुनिया से पार चले जाना, बुद्धि को चौका लग गया आपका, और सीधा परम धाम में बुद्धि गई तो छक्का लग गया, सबसे जास्ती कमाई हो गई, बाबा के पास जाके बहुत आपको मिल गया। माया के खिलाड़ी जो हैं आपके बुद्धि को पकड़ने में यार लगते हैं, संकल्प रूप बॉल को पकड़ने लगेंगे, कमाई करने नहीं देते, वो अपोजिशन है। कितनी भी वो अपोजिशन करे, हमने युक्ति से चौका मारना ही है, छक्का मारना ही है। बुद्धि को इस साकारी दुनिया से पार या परम धाम में हमें पहुंचाना है और बाबा के पास से कमाई जास्ती से जास्ती करना है, ठीक है ना। अभी मनसा सेवा के बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? माताओं को विशेष एक प्रयोग करना है, डेली करना है। आपका जो परिवार है, जो भी परिवार है, उस परिवार को आपको राइट हैंड के बाजू में इमर्ज करना है। सूक्ष्म अवतन में यहां आप हैं और शिव बाबा ब्रह्मा तन में हैं, बाबा से सकाश आ रही हैं, आपके परिवार के सदस्यों पर जा रहे हैं। जैसे आप खाना खिलाकर उनका ध्यान रखती हैं, ऐसा स्थूल खाने के साथ ऐसा सूक्ष्म खाना देकर उनकी पालना देना है। इस पालना से क्या होगा, बच्चे शांत हो गए, पति शांत हो गए, जैसा आपका परिवार आप चाहते हैं ऐसा परिवार आपका ढल सकता है। बहुत अच्छी युक्ति है ये, योगदान देना, समझा। बोलो, और कोई बात है कि क्लियर हो गया सबको? केवल आवश्यकता है करने की, अभ्यास करने की। हाँ, जितना करते जाएंगे उतनी हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। टेक्निक समझना बाकी है, उसकी विधि समझना बाकी है। विधि पता चल गई तो फिर जितना मर्जी आप प्रयास करते रहो, सिद्धियां प्राप्त करते रहो, है ना। बोलो, कोई प्रश्न है कि नहीं, कि पूरा करें? शाम के समय हम बहुत अच्छा टॉपिक्स लेंगे और बहुत अच्छा योग का प्रयोग करेंगे, वो सारे भट्टी का क्रीम रहेगा। इसलिए शाम को सेशन को किसी को मिस नहीं करना है। 5 से लेकर 7:30 बजे तक, बराबर 5 बजे आना है और 7:30 बजे तक हम वो 1 घंटा क्लास करेंगे। बाबा कैसे दादी के तन में आते हैं वो विधि भी आपको क्लियर करेंगे और बहुत सुंदर योग का प्रयोग भी हम करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी अनुभूति बाबा आपको कराएंगे। ओम शांति, ठीक है। और कुछ है तो नहीं किसी का प्रश्न? ये बहन जी क्या पूछ रही हैं, यहां के पुरुषार्थ से हमें सतयुग त्रेतायुग में तो मिलता ही है, लेकिन द्वापर कलयुग में भी मिलता है क्या? अभी देखो, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। मैं 10 फीट चढ़ गया तो बाद में मुझे क्या करना है? उतरना है। तो सतयुग त्रेतायुग में तो हम उतर जाते हैं, उसके बाद द्वापर कलयुग भी उसमें आता है। अगर आपने 5 ही फीट जंप किया तो आपका 5 फीट का ही दौरा रहेगा वापसी का। इसलिए अंडरस्टूड है, ये 63 जन्मों की नहीं, सारे कल्प की कमाई है। 1 जन्म की नहीं, 21 जन्म की नहीं, 84 जन्मों की ये कमाई है, सारे कल्प की, समझा क्या। इसलिए इसको साधारण रीति से नहीं लेना है। अंतिम घड़ियों में यहां तक मैं पहुंचा हूं, इससे नीचे मैं कभी जा नहीं सकता हूं, ये गारंटी है। 1000 रुपया मेरे पास था, खाते 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 अभी मेरे पास 1 रुपया बच गया। अब इससे नीचे नहीं जा सकता हूं, भिखारी बनकर किसी को मांगूंगा नहीं, अधिकारी बन के रहूंगा। तो ऐसी जो हर एक आत्मा की जो परफेक्शन की डिग्री होती है, हर एक की होती है, अलग अलग होती है। 100 शिव बाबा हैं, 99 ब्रह्मा बाबा हैं, हर एक की परफेक्शन की डिग्री अपनी अपनी होती है। एक बच्चा 33 मार्क 100 में से मिलके खुश हो रहा है, पेड़े बांट रहा है, झूम रहा है, मैं तो पास हो गया। अब दूसरा बच्चा 99 मार्क्स मिलके भी रो रहा है, अरे भाई क्यों रो रहा है, मुझे 99 क्यों मिला, क्यों मुझे 100 नहीं मिला, रो रहा है। अब ये 33 में जो चल रहा है वो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन की उसकी उतनी है, और इसकी डिग्री ऑफ परफेक्शन बहुत हाई है, इसलिए जब तक वहां तक नहीं पहुंचता है तब तक वो प्रयास करता ही रहेगा। 25 वोल्टेज का बल्ब फुल लाइट देता है तो उसका 25 ही परफेक्शन है, किसी का 50 होगा, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, इसलिए हमें पूरा प्रयास करके बाद में भाग्य पर छोड़ना है, ड्रामा पर छोड़ना है, लेकिन प्रयास में थोड़ी भी हमें मार्जिन नहीं छोड़नी है, समझा। इसलिए बाबा कहते 200 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करो, जितनी ऊर्जा आप में है, जितनी क्षमता है, जितना पोटेंशियल है पूरा यूज करो, फिर बाद में भाग्य पर छोड़ो। पहले भाग्य को नहीं कोसना है, पहले पुरुषार्थ करके फिर भाग्य पर छोड़ना है, समझा। निराकार स्थिति अशरीर स्थिति अलग अलग है या एक ही है, पूछ रहा है भाई। निराकार स्थिति अशरीर स्थिति विदेही स्थिति आत्मअभिमानी स्थिति सारी एक ही है, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। अशरीर स्थिति माना आत्मिक स्थिति, लेकिन कईयों का कंफ्यूजन होता है बिंदु स्वरूप स्थिति और बीज रूप स्थिति, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बिंदु रूप स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति अर्थात मैं इस देह रूपी वृक्ष का बीज आत्मा, कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा, और दोनों के बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है और बहुत पावरफुल योग की स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं, इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। इसमें दो बातें हैं, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन है, बिंदु रूप स्थिति में केवल एक ही पार्ट है आत्मा का अभ्यास का। तो बीज रूप स्थिति को हमें बढ़ाना है, और पावरफुल बीज रूप स्थिति अर्थात ज्वाला स्वरूप स्थिति, ज्वालामुखी योगाभ्यास उसको कहते हैं पावरफुल बीज रूप स्थिति को, एक्सट्रीमली पावरफुल, समझा। ठीक है, कुछ करना है अभी? अच्छा, भोग लगेगा, हो गया पूरा करें। प्रश्न और कहीं किसी का है? भाई साहब पूछ रहे हैं देहाभिमान और देह का भान एक ही है क्या? इसमें तीन स्टेजेस हैं, देह का भान थोड़ा जास्ती बढ़ता है तो देह का अभिमान, मैं अभिमान हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, देह का अभिमान आ गया, और जैसे जैसे बढ़ता है ना तो देह का अहंकार आ गया, ये तीसरी स्टेज, टॉप स्टेज हो गई अहंकार, अहंकार में चूर हूं। ये देह के भान की तीन स्टेजेस हैं। अभी आत्मा की स्टेजेस, आत्मा का भान पहली स्टेप, फिर आत्मा का अभिमान, आत्म अभिमान स्थिति, और आत्मा का अहंकार नहीं कहेंगे, बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अभिमानी स्थिति कहेंगे। लेकिन आत्मा का अभिमान अर्थात मैं विशेष आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, उसको कहेंगे आत्मा का अभिमान, वो जरूरी है। राजकुमार अपने पैलेस में घूम रहा है, ऐसे मरे मुर्दे की तरह चेहरा होगा होगा उसका, कौन उसको राजकुमार कहेगा? राजकुमार माना अपने चेहरा, उसका बोले, उसका ड्रेस बोले, उसकी चलन बोले, रॉयल्टी, यार ये राजकुमार लगता है, पहचान नहीं, बिना भी उसको नहीं मिले तो भी कहेगा ये तो राजकुमार लगता है, इसका चलन चेहरा, इसका ड्रेस देखो, राजकुमार लग रहा है। जैसे हम हीरो पार्टधारी हैं, इसलिए हमारे चेहरे पर शुद्ध नशा होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या होता है, शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन करते हैं भाई, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, मुझे अशुद्ध अहंकार है या शुद्ध नशा है। अब नारायण बनने वाली आत्मा को तो इतना नारायणी नशा चेहरे पर तो होगा, तो थोड़ा सा इसमें अहंकार है, शुद्ध नशा जितना जास्ती होगा उतना वो नम्र चित्त होगा। बाबा सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है, लेकिन हर मुरली के अंत में बाबा के चेहरे के तरफ देखो, याद प्यार नमस्ते, आंखें झुक रही है, सिर झुक रहा है, नमस्ते कर रहा है भगवान, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, और हम बच्चों के सामने लायक बच्चे भी नहीं बने हम, और झुक रहा है नमस्ते, क्यों झुक रहा है बाबा, क्यों नमस्ते कर रहा है, मेरे से सीखो, मैं कितना ऊंचा हूं और कितना नम्र चित्त हूं, मेरे से सीखो। जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वह नम्र चित्त होता है। तो ये शुद्ध नशा है, और अशुद्ध अहंकार अगर होगा तो उसमें नम्रता नहीं होगी। जब बांबू है ना, अकड़ा हुआ रहेगा, और आम का पेड़ झुका हुआ रहेगा, बहुत पेड़ है कि बहुत उस पर फल होए, लेकिन बांबू अकड़ा हुआ घर्षण करेगा वो दोनों आपस में, तो जल जाएंगे, सारे जंगल को भी जला देंगे। इसलिए अशुद्ध अहंकार हमें नहीं होना चाहिए, शुद्ध नशा जरूर होना चाहिए, बल्कि शुद्ध नशे का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अभी सभा में कौन महाराजा कौन राजा बनने वाला है बताऊं, अब आप बुरा नहीं मानो तो बताऊं, कौन प्रजा बनने वाला है, कौन नौकर बनने वाला है, बोलो बताऊं, बुरा तो नहीं लगेगा, मेरे पास थर्मामीटर है, डॉक्टर जी पास में वो होता है ना बुखार का, फट से निकाल के भाई लगाओ, हाँ 103 बुखार है, बताऊं, अच्छा पक्का बताऊं, मेरे चेहरे की तरफ देखो, हम अंतर है कुछ, जरे जिसके चेहरे पर रॉयल्टी है, नशा है, बहुत अच्छा है, समझ लो वो राजा महाराजा बनने वाला है, और जिसका चेहरा बहुत पुअर है, बहुत गरीबी चेहरे पर है, अमीरी नहीं गरीबी चेहरे पर है, इसका मतलब प्रजा क्वालिटी है, नौकर चाकर क्वालिटी है, सिंपल टेस्ट है। चेहरे पर वो रूहानी नशा, आंखों में चेहरे वो नशा ऑटोमेटिक दिखाई देता है, तो समझ लो वो राजा महाराजा बनने वाला है, और वो जितना कम है उतना क्वालिटी लो है, सिंपल। इसलिए हमें क्या करना है, अंदर ही अंदर सोमान में रहना है, और ईश्वरीय नशे के परसेंटेज को नेचुरल बढ़ाना है। बहनों को बुलाओ ना, तीन चार बहनें बैठे, ठीक है, क्लियर हो गया। इसलिए हमें कमरे में भी बैठे हैं ना, तो ऐसा नहीं सोचे हमें कोई नहीं देख रहा है, चेहरा कैसा भी हो तो भी लगेगा, नहीं, हमें विश्व की स्टेज पर समझना है, हजारों आंखें मुझे देख रही हैं, इसलिए मुझे हमेशा अपने मस्ती में ईश्वरीय नशे में ही रहना है। ब्रह्मा कुमार बने नहीं थे ना, तब तक कोई देखता नहीं था, और जब से सेंटर पर आने लगे ना, 50 आंखें आपको देख रही है, क्या खा रहे, क्या पहन रहे, क्या चल रहे, सब ढूंढते ढूंढते देखते हैं भाई, क्यों होता है ना प्रैक्टिकल। तो इसलिए हमें ईश्वरीय नशे को बढ़ाना है। ओम शांति।